ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 24वां भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 12। बुधा सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरो रगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरैः। बुधा वाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्वलोक के वासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्धलोक पृथ्वीलोक तथा नागलोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नूपुरों के झनकार से मोहित हो रहे थे। तात्पर्य, सामान्यतया कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना प्राकृतिक कार्य है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह अधिक अधिक सुंदर होती जाती है। किंतु शतद्रुति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह उत्सव के में ही सारे संसार को मोह लिया। निस्संदेह अपने अपने नूपुरों की झनकार से ही बड़े बड़े विद्वान तथा महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाह रहे थे, किंतु वस्त्राभूषणों से लदी होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। चूंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे, अतः नूपुरों की झनकार सुनकर ही मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता न थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की सनक, नूपुरों की झनकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखों बंद किए योगाभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष यह है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता, भले ही वह महान देवता या उच्च लोक का वासी क्यों न हो। केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकृष्ट नहीं कर सकती। अनुवाद दोहराइएगा। जब शतद्रुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के वासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोक पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नूपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य कृष्णा। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, इस विषय पर सारे शास्त्रों में हम बार बार वर्णन सुनते हैं, क्योंकि यही प्रमुख कारण है हमारे संसार में बद्ध होने का। जैसे हम पढ़ रहे हैं आज के श्लोक में और पिछले कई श्लोकों में कि ये पुरुष स्त्री आकर्षण हृदय ग्रंथि एक गांठ हृदय में पैदा कर देता है जिससे छूटना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए दोनों स्त्री और पुरुष को इस आकर्षण से संभल के या बच के रहने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्तों के समाज में एक विभाजन किया जाता है, माता जी एक तरफ बैठती हैं, प्रभु जी दूसरे तरफ बैठते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में अधिक मिश्रण नहीं होता है। इन सब चीजों का कारण है। वैसे हमारी प्रथा, वैदिक प्रथा ऐसी थी कि पुरुष अपने पत्नी के द्वारा किसी दूसरे स्त्री के मुख का भी दर्शन नहीं करता था। आजकल का जमाना अलग है, आप नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन ये प्रथा थी। एक भक्त हमें बता रहे थे कि एक ब्राह्मण थे उनके पहचान में, और उनकी पीढ़ियों से ये प्रथा चलती थी कि वो व्यक्ति भी अपने घर में किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। बात भी करना हो तो मुंह नीचे करके, भले अपने बहू क्यों ना हो, मुंह नीचे करके बात किया करते थे, कभी भी मुंह नहीं देखते थे। क्योंकि चाणक्य पंडित ने भी कहा है, अन्य शास्त्रों में भी बताया है कि स्त्री का आकर्षण जो है इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकता है। जब बड़े बड़े देवतागण मोहित हो गए तो एक साधारण कोई व्यक्ति मोहित हो जाने की कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। रामायण में यह कथा सुनते हैं कि जब रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया तो प्रभु रामचंद्र और श्री लक्ष्मण उनको खोजने के निकल गए वन में। तो उस समय ढूंढते ढूंढते सीता देवी का एक कपड़ा मिला और उनके कानों की एक कुंडल। जब वो प्रभु रामचंद्र जी ने देखा तो लक्ष्मण से पूछा कि अरे देखो लक्ष्मण, ये सीता के आभूषण है, क्या तुम पहचान सकते हो इनको? तो लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मैं इसे पहचान नहीं सकता। अगर केवल मैं सीता देवी के चरण कमलों के अंगूठियों में जो आभूषण है केवल वो मैं पहचान सकता हूं। क्यों? इसका तात्पर्य क्या है कि लक्ष्मण ने सीता देवी के चरणों का ही दर्शन किया था, कभी मुंह का दर्शन ही नहीं किया था। क्योंकि ऊपर मुख को देखकर वो नहीं कभी भी बात करते थे, कभी मुंह नीचे करके ही बात करते थे, क्योंकि मां बराबर थी, वो वरिष्ठ थी। इस तरह से एक उदाहरण आता है कि वैदिक संस्कृति क्या चीज है। आजकल के जमाने में हम ऐसे कोई चीज सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे संभव है। सारे समाज में तो जहां हर जगह वस्त्रहीन दिशा में सब लोगों की तस्वीर होती है, टेलीविजन, सिनेमा, ये सब चीजें हैं। इतना भ्रष्ट हो चुका है समाज आजकल कि ये संस्कृति अभी नहीं रही। लेकिन फिर भी भक्तों को ये आवश्यक है कि वो ऐसे आकर्षण से हमेशा बचकर रहे। स्त्री और पुरुष का जो संग है वो सारे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे पांच इंद्रियां अपने अपने तन्मात्राओं से विषयों से आसक्त हो जाती हैं, आकृष्ट हो जाती हैं, और एक भी इंद्रियां हमें हमारे पतन के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। अपने आंखों से भी हम किसी सुंदर रूप देखते हैं तो उससे पतन हो सकता है, कानों से किसी सुंदर चीज को सुनते हैं तो उससे पतन हो सकता है, इत्यादि। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः, कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका भी मन और बुद्धि हरण कर सकती है। एक भी इंद्रिय अगर किसी विषय के ऊपर आकृष्ट हो जाती है तो वो व्यक्ति पतित हो सकता है। श्रीमद् भागवत में कई जगह यह उदाहरण दिया गया है। जैसे एक जंतु होता है जो रात को दिखाई पड़ता है, वो उजाले की ओर, रोशनी की ओर हमेशा तेजी से जाता है, अंधेरे से आता है जहां किस कमरे में उजाला हो, और सीधे वहां उस आग की ओर या बिजली की ओर जाता है। वो जंतु ये नहीं सोचता कि आग में मैं प्रवेश कर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने आंख वो अग्नि के प्रति इतना आकर्षण उसके हृदय में हो जाता है कि वो सीधे अग्नि में जाता है, भस्म हो जाता है। इस तरह से हमारी आंखें भी हमें संसार में सुंदर सुंदर रूपों की ओर आकर्षित करते हैं और इस तरह से व्यक्ति की आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो वन में हिरण होती है तो हिरण को आकृष्ट करने के लिए शिकारी अपने बांसुरी से या कोई अन्य संगीत के वाद्य से मधुर ध्वनि से मृग को या हिरण को आकर्षित करता है और फिर उसे तीर मारकर मार देता है। इस तरह से अपने कान भी हमें मृत्यु की ओर खींचते हैं, जिस तरह से हिरण को शिकारी खींचता है। हिमालय में कस्तूरी मृग होता है, ये कस्तूरी मृग जब सूंघता है कि कोई अत्यंत एक आकर्षित सुगंध कहीं से आ रहा है तो उस सुगंध के पीछे पीछे भागता है। उसे ये नहीं पता चलता कि ये सुगंध उसके निजी शरीर से आ रहा है और उस सुगंध कहां से आ रहा है ये ढूंढते ढूंढते भागते रहता है, जंगल भर दिन भर भागता है। आखिर में इतनी थकावट हो जाती है कि एक जगह गिरकर मर जाता है। तो अपने नाक हमें सुगंधित वस्तुओं की ओर खींचता है और जैसे मृग को भी कस्तूरी मृग को वो मार डालता है, उसी तरह से हमारे ये नसिका भी हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति मछली को पकड़ना चाहता है तो क्या करता है, एक डोरी अंदर डाल देता है और उसके अंत में कोई कीड़ा लगा देता है। जब मछली उस कीड़े को देख लेती है तो सोचती है कि कितना ये स्वादिष्ट होगा, ये मेरे लिए आज तो रविवार का फीस्ट संडे फीस्ट हो गया। तो जाके वो चबाने के लिए वो मुंह खोलती है और जब खोलती है तो उसके अंदर जो हुक होता है उसे पकड़ लेता है और फिर वो आदमी उसे खींच कर बाहर निकाल लेता है और उसको पका के खा लेता है। तो ये जिह्वा जो कि स्वादिष्ट व्यंजन को चखने का इच्छुक है ये भी हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। और हमारी त्वचा, हमारा चमड़ा जो है ये तो हमें पतन की ओर ले ही जा रहा है। जंगल में जब शिकारी हाथी को पकड़ना चाहता है तो वो क्या करता है कि पहले कि वो एक हथिनी को खड़ा कर देता है और हथिनी के सामने एक गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के ऊपर घास लगा देता है ताकि कोई देख ना पाए कि यहां पे गड्ढा है। और जब हथिनी वहां खड़ी हो जाती है और आवाज करती है तो हाथी इसको सुनकर देखकर आकृष्ट हो जाता है और इसका स्पर्श करने के लिए इच्छुक हो जाता है, भोग करने का इच्छुक हो जाता है और दौड़ते हुए चले आता है। जब वो दौड़ के आता है तो सीधे उस गड्ढे में गिर जाता है क्योंकि वो देख नहीं पाता है कि यहां पे गड्ढा है क्योंकि शिकारी ने ढक लिया होता है। तो इसी तरह से अपने शरीर के स्पर्श का आनंद लेने के लिए व्यक्ति उधर उधर भागते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो गड्ढे में गिरने वाले हैं और जाकर उनकी मृत्यु होने वाली है। तो इस तरह से हमारे पांचों इंद्रियां हमें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं लेकिन अंततः हमें गड्ढे में गिराकर हमारी आध्यात्मिक मृत्यु की ओर खींचे ले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए कि हमारे इंद्रियों को हम इधर उधर भटकने न दें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये हमारा पतन जो है बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब सबका पतन हो जाता है, हम खत्म हो जाते हैं, बुद्धि नाश हो जाता है। ये शुरुआत कहां से होती है, ध्यायतो विषयान पुंसः। विषयान मतलब इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग के विषय। जब हम इंद्रिय भोग के विषय के ऊपर चिंतन करते हैं तो उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संग आसक्ति हो जाती है और जब आसक्ति हो जाती है किसी विषय से तो क्या होता है, संगात संजायते कामः, काम वासना उत्पन्न हो जाती है। काम वासना क्या है, भोग करने की वासना, भोग करने की जो वृत्ति है। तो किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से जब हम आसक्त हो जाते हैं तो उसका भोग करना चाहते हैं, और फिर जब वो भोग करने की इच्छा होती है और अगर वो तृप्त नहीं हो पाए किसी वजह से, और तृप्त कैसे होगी, अग्नि में घी या तेल डालने से अग्नि कभी बुझ नहीं सकती है ना, तो उसी तरह से काम वासनाओं को तृप्त करने के प्रयास से आदमी संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्योंकि काम वासना सदैव अतृप्त रहती है, इसलिए ऐसे अतृप्त काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात ये क्रोध भवति सम्मोह, और फिर क्रोध से सम्मोह आ जाता है, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, जब सम्मोह में आ जाता है आदमी मोहित हो जाता है तो उसकी स्मृति शक्ति नहीं रहती कि मेरे सामने कौन है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र के काम वासना से मोहित होकर अपनी पुत्री के पीछे भागे थे, ब्रह्मा जी सृष्टि करता देखिए भूल गए ये कौन है मेरे सामने जो है, सब भूल जाते हैं। इसलिए स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, ऐसे स्मृति का नाश होने के बाद में बुद्धि भी नष्ट हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने के कारण आदमी का पतन हो जाता है, आगे पीछे बाएं दाएं कुछ नहीं देखता है आदमी, ये है मोहित होने का फल। विश्वामित्र मुनि इतने बड़े साधु थे, इतने बड़े तपस्वी योगी थे, 60,000 वर्षों तक उन्होंने कड़ी तपस्या की थी, कोई मामूली बात नहीं है, सत्ययुग के हिसाब से भी कोई मामूली बात नहीं, आजकल के हिसाब से तो बहुत असाधारण बात है, लेकिन उस काल के तुलना से भी बहुत असाधारण बात थी। और इतना सब करने के बाद जब वो तेजी से ऊपर जा रहे थे योग सीढ़ी के ऊपर प्रगति करते हुए, लेकिन मेनका के मंजिल पर अटक गए, केवल मेनका के नुपुर की झनक की आवाज सुनकर वहां पर मोहित होके उनकी सारी तपस्या भंग हो गई और फिर शकुंतला का जन्म हुआ। तो देखिए इतना शक्तिशाली है ये आकर्षण, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने काम को तो वश में कर लिया, धीरे धीरे से बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे ये क्या हो गया, मेरे 60,000 वर्ष की तपस्या भंग हो गई। तो इस बार बहुत अपने आप को संभल के और तपस्या की, लेकिन आगे चल के उन्होंने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को शाप दे दिया क्रोधित होकर, क्योंकि उन्होंने त्रिशंकु को की सहायता करने से इनकार कर दिया। तो इस बार क्रोध की वजह से उनके तपस्या का फल क्षीण हो गया। जब हम शाप देते हैं तो जो भी हमने तपस्या की है, जिसके बल पर वो शाप दे पाए या जिसके बल पर शाप काम करेगा, वो बल क्षीण हो जाता है। इसलिए जो ऋषि मुनि शाप देते हैं उनको पुनः जो तपस्या शुरू करना पड़ता है, और इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो शाप नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि हाय हाय ये क्या हो गया, इतने साल तपस्या की और खत्म हो गया, और दूसरी बार तपस्या आरंभ की तो क्रोध से खत्म हो गया, पहली बार काम वासना के शिकार बन गए, दूसरी बार क्रोध के गुलाम बन गए। और फिर से उन्होंने कहा कि इस बार न तो क्रोध का न तो काम का हम आश्रय लेंगे, लेकिन आगे चल के फिर उनका पतन हो गया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के प्रति वो ईर्ष्या भावना रखते थे। तो इस बार ईर्ष्या से उनका पतन हो गया। फिर अंत में जब वशिष्ठ मुनि ने उनको स्वीकार कर दिया तो उनका हृदय पिघल गया, फिर ईर्ष्या से भी मुक्त हो गए, वशिष्ठ मुनि के साथ उनका अच्छा संबंध स्थापित हुआ। ये कथा तो बहुत लंबी है, केवल संक्षेप में सुनाया है, रामायण में बड़े और महाभारत में भी विस्तार में इस कथा का वर्णन आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि भी, देवी देवता, उच्च लोक के निवासी, जहां यहां पर सुन रहे हैं, गंधर्व लोक के निवासी, नाक लोक के निवासी, ये सब इसके वश में आ जाते हैं। केवल जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो इससे मुक्त हो सकते हैं, अगर वो शुद्ध पूरी तरह से हो गए तो। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, जैसे आप जानते हैं, उनमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य का। वैराग्य का ऐश्वर्य का मतलब है कि न केवल भगवान इस ऐश्वर्य से, इस संसार से विरक्त हैं, बल्कि संसार के सारे आकर्षणों से भी वो पूरी तरह से विरक्त हैं। भगवान ने एक विशेष अवतार धारण किया था, वो है नर नारायण अवतार। दक्ष की एक पुत्री थी, दक्ष प्रजापति, जिनका नाम था मूर्ति। उन्होंने धर्मदेव से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ। ये पुत्र थे नर नारायण ऋषि, और वो सीधे चले गए बद्रिक आश्रम और वहां तपस्या करते हैं। आज भी नर नारायण ऋषि हैं यहाँ बद्रिक आश्रम में, लेकिन हम हमारी साधारण दृष्टि से उनको देख नहीं पाएंगे। वो तपस्या कर रहे हैं, करोड़ों सालों से करते आए हैं जगत के कल्याण के लिए, और आज भी कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए तपस्या करते आ रहे हैं। तो इस तरह से इंद्रदेव ने जब देखा कि ये ऋषि इतने लंबे समय से कड़ी तपस्या कर रहे हैं और भ्रमित होने का कोई, जब कामदेव वहां आए तो उन्होंने एक ऐसा सुंदर वातावरण पैदा किया, वसंत ऋतु ही पैदा कर दिया। बहुत सुंदर मधुर पवन बह रहा था, सुंदर फूलों का सुगंध और ऐसे सुंदर सुंदर आवाजें, पक्षियों की आवाज और फिर अप्सराओं के, क्योंकि अगर कोई ऋषि मुनि ज्यादा तपस्वी होकर ज्यादा शक्तिशाली बन जाए तो इंद्रदेव सोचते थे कि मेरे कुर्सी खतरे में हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत प्रयत्न करने के बाद भी गंधर्व या कामदेव अपने आप में ही मुरझाने लगे, क्योंकि नर नारायण ऋषि की शक्ति इतनी अधिक थी कि इस शक्ति के सामने ये लोग मुरझाने लगे और अत्यंत भयभीत हो गए। नर नारायण ऋषि का ध्यान तनिक भी भंग नहीं हुआ, वो तो आंख बंद करके ही आराम से बैठे थे ध्यान में। उन्हें पता चला कि कंदर्प आए हुए हैं अप्सराओं के संग में, दोनों आंखें खुली। जब खोले तो क्या देखा कि कंदर्प कामदेव अपने साथियों के संग हाथ जोड़कर सर झुका के खड़े हैं, कांप रहे हैं एक पत्ते की तरह, क्योंकि घबरा रहे हैं कि हम हमारे कार्य में असफल हुए और अभी ऋषि से हमें शाप लेने की नौबत आ गई है, अभी शाप मिलने वाला है। इसे दोनों क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़कर वहां नम्रता से खड़े थे। तो उस समय नर नारायण ऋषि के हृदय में करुणा की भावना जागृत हुई। उन्होंने कहा कि अरे, आप इतने बड़े बड़े देवी देवतागण मेरे छोटे से आश्रम में पधारे हैं, तो आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको अच्छा भोजन आहार खिलाया पिलाया, उनको आसन दिए बैठने के लिए, मीठे शब्द उनसे कहे। और जब ये व्यवहार देखा कंदर पर उनके साथियों ने, तो आश्चर्यचकित रह गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, हमें कृपा करके क्षमा करें, हमारी ओर से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो साक्षात भगवान ही हैं, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए, और भगवान होने के नाते आप नित्य दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं, ये संसार का आकर्षण भला आपको कैसे मोहित कर सकता है। ये हमारी ही मूर्खता थी कि हमने ये प्रयास किया, और वैसे आपकी बात तो दूर है, आपके भक्त भी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमारे देवलोकों की प्राप्ति भी करना नहीं चाहते, उसे तुच्छ समझते हैं, वो भक्ति करके आपके धाम में सीधे पहुंच जाते हैं, और हम जो हैं कभी कभी मोहित होकर क्रोधित होकर भक्तों के पथ में अड़चन डालते हैं। हम भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं कि हम आपके भक्त हैं, कभी कभी उनकी सहायता करने के बजाय उनके पथ में अड़चन डालते हैं, लेकिन भक्त आपके भक्ति करने के बल स्वरूप, वो बल से इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमारे जो अड़चन लगाए हुए हैं उनके सिर पर पैर उनको कुचल के वो आपके धाम में चले जाते हैं। लेकिन जो आपके भक्त नहीं होते हैं, वो भले कितने ही तपस्या क्यों ना करें, इतने हजारों हजारों सालों तक तपस्या क्यों ना करें, लेकिन वो क्रोध से क्रोध के वश में होकर गाय के बछड़े के में जितना पानी है उसमें फिर वो डूब जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतना सब तपस्या करने के बाद भी क्योंकि वो अभक्त हैं, तो छोटे से कारण के लिए उनका पतन हो जाता है, जैसे विश्वामित्र मुनि का हुआ, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, इसलिए क्रोध से काम से शिकार होकर उनका पतन हो जाता है। तो ऐसे प्रार्थना करने लगे, उस समय नर नारायण ऋषि ने कहा कि हे देवी देवतागण, आप आए हैं तो मुझे आपको कोई भेंट तो देना चाहिए, आप घबराइए नहीं, मैं आपको शाप नहीं देने वाला, आप मेरे अतिथि हैं, अतिथि के प्रति तो कोई क्रोधित नहीं होता। इसलिए उन्होंने उस क्षण हजारों हजारों की संख्या में सुंदर स्त्रियों को उत्पन्न किया अपने योग शक्ति से, और ऐसे सौंदर्य था इन सारे स्त्रियों का कि देवलोक के निवासी चकाचौंध रह गए, देखते रह गए कि ऐसा सौंदर्य उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो सोच रहे थे कि स्वर्गलोक के अप्सरागण बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब ये इन स्त्रियों को देखा तो वो अप्सरागण भी देखते रह गई। फिर नर नारायण ऋषि ने कहा कामदेव से और अन्य उनके साथियों से कि चुनो, इनमें से कोई एक सुंदर स्त्री चुन लो और इंद्रदेव के पास ले जाओ उनको, इनमें से कौन सी अप्सरा आपको चाहिए। फिर कामदेव ने उर्वशी नाम के अप्सरा को चुना और फिर उर्वशी को इंद्रदेव के पास ले गए, नर नारायण ऋषि का एक भेंट समझकर उनको उपहार दे दिया। और जब इंद्रदेव ने ये सुनी ये कथा कि नर नारायण ऋषि कितने शक्तिशाली हैं, तो लज्जित हो गए और भयभीत हो गए कि मैंने क्या किया, नहीं करना चाहिए था। और फिर उर्वशी इंद्रदेव के दरबार के आभूषण बन गए। तो उर्वशी का नाम तो हमने सुना है, वो कहां से आई, ये कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है। इस तरह से शिव जी वो भी धीर पुरुष कहलाते हैं। आपको पता है कि जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए वो आए थे वहां, तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी, उनका नाम था रति, वो बड़े दुखी हो गई थी। और रति ने फिर से वो आई द्वारका में, और यही कंदर्प ने फिर से जन्म लिया प्रद्युम्न के रूप में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। और फिर से रति और कंदर्प जो कि प्रद्युम्न के रूप में आए थे, उन दोनों का मिलन फिर से हुआ और दोनों का विवाह फिर से हो गया। तो भगवान की कृपा भी हुई, शिव जी या जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी के प्रति क्रोध भी करते हैं तो उस क्रोध का कोई लाभ भी होता है, उनका हित ही होता है उसमें। तो शिव जी क्योंकि कामदेव के आक्रमण से वो बिल्कुल दूर रहे, इसलिए उनको धीर पुरुष कहते हैं। इसी तरह से कितने ही सारे उदाहरण हैं, हरिदास ठाकुर की चर्चा हम थोड़े दिन पहले सुन रहे थे कि किस तरह से साक्षात माया देवी आई थी, उनसे भी वो बिल्कुल मोहित नहीं हुए। इतने सुंदर वेश्या भी आई थी, उनसे भी बिल्कुल मोहित नहीं हुए। इसलिए यमुनाचार्य जो श्री संप्रदाय में बड़े शुद्ध भक्त रहे, उन्होंने प्रार्थना की है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामन उद्यतरंतुमासीत तद अवधि बतनारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठी वनम च। वो कहते हैं कि यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले चुका है, तब से क्या हुआ है, नव नवरस धामन उद्यते रंतुम आसीत, मुझे नए नए रस का आस्वादन मिल रहा है और इस रस का आनंद लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर क्षण कुछ नई बात आती है और जब से ये रस का आस्वादन करते रहता हूं तदवधि, तब से क्या होता है, बतर हाय हाय ये क्या है, नारी संग में ये स्त्री संग का विचार स्मर्य माने, स्मरण जब होता है मुझे, भवती कुछ होता है मेरे हृदय में, क्या होता है, मुख विकार है, मेरा मुख उसका विकार हो जाता है। और फिर सुष्टु निष्ठी वनम च, इसको बहुत तुच्छ समझकर मैं क्या करता हूं, थूक देता हूं साइड में। कितनी कठोर भाषा है, संत लोग भी कभी कभी कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो घृणा है पुरुष स्त्री संग के लिए, उसको वो स्पष्ट रूप से व्यतीत कर रहे हैं। वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं या केवल झूठा अपने आप को ऊंचा भक्त कहलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वास्तव में जो उनके हृदय में बात है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से ऐसे रस का तूफान हृदय में उमड़ने लगता है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया, खास करके चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में। तो जब ये तूफान उमड़ने लगते हैं कृष्ण रस के, कृष्ण भक्ति रस के, तो उस समय संसार से बड़े आकर्षण और बड़ा से बड़ा तथा कथित सुख बिल्कुल तुच्छ लगने लगता है। इतना तुच्छ कि जैसे यमुनाचार्य वर्णन करते हैं, मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च, थूकने के बराबर। जब हम संसार में छीतू करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु से, इसका मतलब है कि हम उस चीज को बहुत तुच्छ समझते हैं। तो संसार में बड़े बड़े राजा से लेकर देवी देवता, गंधर्व लोक के निवासी, नाग लोक के निवासी, सभी ये पुरुष स्त्री संघ के जाल में फंस के मोहित हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी इससे आकृष्ट नहीं होता है। ये है भक्ति की खूबी। अन्य किसी भी पद्धति से हम इस काम वासना के परे नहीं आ सकते हैं, केवल भक्ति करने से। क्योंकि भक्ति करने से एक ऊंचा स्वाद मिल जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हालांकि कभी कभी हृदय में ये काम वासना की इच्छा रह भी जाए, लेकिन क्योंकि हम उसे ऊंचे रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए इस निम्न श्रेणी के रस का को सहन करने के लिए वो खुद ब खुद क्षमता अंदर आ जाती है। और जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो वैसे वैसे ये काम वासना वश में आने लगती है। जिस तरह से दवाई लेते लेते बीमार व्यक्ति का बुखार कम होते जाता है, तो उसी तरह से भक्ति में प्रगति करते करते ये काम वासना धीरे धीरे शनै शनै हमें कम सताने लगती है। शुरुआत में बहुत सताती है, बार बार सताती है, और फिर दिया सलाई मैचस्टिक लगाने के लिए तो बाहर संसार में बहुत कुछ है, ये सारे विज्ञापन सिनेमा वगैरह वगैरह, ये आजकल की समस्या है। आजामिल के समय तो कहीं कहीं विरला ही ऐसे कोई दृश्य दिखाई पड़ते थे, लेकिन बेचारे आजकल के नवयुवक कैसे, ये नवयुवतियां कैसे इन चीजों से बच सकते हैं जहां वातावरण इतना दूषित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्तों के संग में आएं और बहुत अच्छी तरह से भक्ति करें। जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों में आनंद प्राप्त कर लिया है तो भला इधर उधर क्यों भागेगा, वो यहीं पर स्थित होगा, यहीं पर अपने आनंद को प्राप्त करेगा, यही उसका सब कुछ होगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि संसार से सबसे बड़े बंधन और आकर्षण से अगर मुक्त होना है और परम सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मध्वाचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य की तिरुभाव तिथि है। संक्षेप में थोड़ा कुछ श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में कहने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव उडुपी शहर के पास में पाजक क्षेत्र नाम के स्थान में हुआ सन 1248 में। 11 वर्ष पहले ही उनके आविर्भाव का की जो सात सौ पचासवां जो तिथि है, आविर्भाव तिथि, वो बद्रिक आश्रम में मनाया गया था। उसके लिए हम भी गए थे, हमारा सौभाग्य था कि हम भी जा पाए थे, 11-12 साल पहले की बात है। और वहां पर उडुपी के सारे जो अष्टमठ के सन्यासी थे और अन्य भक्त बड़ी बड़ी संख्या में उधर आए थे इस तिथि को मनाने के लिए। तो वहां उनके पिता का नाम था मध्यगेह भट्ट, जो कि शिवाली ब्राह्मण कुल के थे। और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय पाजक क्षेत्र में अपने बचपन से ही उन्होंने कोई अद्भुत गुण प्रकट करना आरंभ किया। उनका नाम जन्म के समय था वासुदेव, और जब वो बहुत ही छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता के कर्ज चुकाने के लिए इमली के बीजों को सोने के सिक्के बना दिए। उनके घर के आंगन में एक इमली का वृक्ष था और अभी भी है, और आज भी जब हम जाते हैं वहां पर, हम देख कर आए थे जब हम यात्रा में गए थे उड़ीपी के, तो पाजक क्षेत्र में गए तो मध्वाचार्य के पिताजी का घर अभी तक है और उस आंगन में ये इमली का वृक्ष आज तक है। और ये वृक्ष के जो बीज थे उनको मध्वाचार्य ने उस समय, वासुदेव बालक था, 5 साल भी हुए नहीं थे, तो उनको जब पता चला कि पिताजी का कर्ज बहुत बढ़ गया है, तनाव में है बड़े, तो उन्होंने सोने के सिक्के बना दिए इन बीज को। सभी आश्चर्यचकित रह गए और सारा कर्ज चुका लिया। तो अगर हमें भी कोई कर्ज ऐसे चुकाने हैं तो हमें पहले भक्ति करनी चाहिए मध्वाचार्य की तरह, फिर सब खुद ब खुद चूक जाएंगे सारे कर्ज। तो तब से सबको पता चला कि यह लड़का वासुदेव बड़ा अद्भुत है, इसके अंदर कुछ विशेष शक्ति है। कहा जाता है कि यह वास्तव में वायुदेव के ही अंशावतार हैं, उनके पुत्र। इसलिए जहां भी हम दक्षिण कन्नड़ प्रांत में जाते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिरों में हनुमान जी, भीमसेन और मध्वाचार्य की मूर्तियां कभी कभी एक साथ में रखी जाती हैं, क्योंकि भीमसेन भी वायुदेव के पुत्र माने जाते हैं कुंती देवी के माध्यम से, और हनुमान जी भी वायुदेवी के अंशावतार हैं, उनके पुत्र माने जाते हैं। तो ये तीनों हुए भाई भाई, तो इसलिए एक साथ में मंदिर में उनकी पूजा भी कई जगह दक्षिण कन्नड़ भाग में होती है। तो 5 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ और उस उम्र में ही उन्होंने एक भीषण असुर का वध किया जिसका नाम था मणिमान। मणिमान ने एक बड़े से सांप का, अजगर का एक रूप धारण किया था, बहुत लंबा चौड़ा था, और मध्वाचार्य अर्थात वासुदेव ने इसका वध किया केवल अपने बाएं पैर के अंगूठे से, केवल उसको कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। 5 साल का बालक उसने अपने बाएं पैर के अंगूठे से कुचला दिया, और उस प्रवाह से, उस जोर से सारा पत्थर पिघल गया। और आज तक भी मध्वाचार्य के घर के सामने थोड़ी दूरी पर वो पत्थर है, और उन पत्थर में ये मणिमान असुर उसके सांप के शरीर का जो पिघला हुआ हिस्सा है वो चिन्ह वहां दिखाई पड़ता है आज तक भी। तो इस तरह से मध्वाचार्य या वासुदेव ने ऐसे अद्भुत कार्य करना आरंभ किया। वो बड़े विद्वान थे, बचपन से ही उनको श्रुतिधर होने के नाते सारे शास्त्र पाठ हो गए, और 12 साल के आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। हालांकि उनके पिता की इच्छा नहीं थी, फिर भी पिता से तर्क करते थे, वाद करते थे, बड़े अकलमंद थे, बुद्धिमान थे, और आखिर पिताजी को मंजूर न होते हुए भी उन्होंने संन्यास ले लिया, और उनके गुरु का नाम था अच्युत प्रेक्ष तीर्थ। और उसके बाद में वो चल पड़े, और काफी तीर्थ यात्रों में जाने के बाद में श्रृंगेरी मठ के एक आचार्य विद्याशंकर से उनका वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ, जिसमें विद्याशंकर के गर्व को उन्होंने क्षीण कर दिया। श्रृंगेरी मठ जो है ये शंकराचार्य ने स्थापित किया हुआ एक प्रमुख मठ है, तो कह सकते हैं कि शंकराचार्य के मायावाद भाष्य की यह राजधानी है। यहां पे सारे बड़े बड़े मायावाद सन्यासी तैयार होते हैं जो जाके मायावाद भाष्य का प्रचार करते हैं। तो विद्याशंकर नाम के आचार्य को उन्होंने तर्क में हरा दिया, पराजित कर दिया, और उसके बाद में वो चल पड़े अपने एक साथी के साथ जिनका नाम था सत्य तीर्थ। वो बद्रिक आश्रम की ओर चले। बद्रिक आश्रम में उन्होंने व्यासदेव जी का दर्शन किया, और उनके सामने भगवत गीता की जो उन्होंने लिखी हुई टीका थी वो सुनाई उनको कि कोई गलती हो तो हमें बताइएगा। और व्यासदेव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बड़े विद्वान हो गए, व्यासदेव जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, इस तरह से व्यासदेव जी के शिष्य भी बने वो। और फिर जब लौट कर आए आनंद मठ जगह में, तो वहां उनके जो साथी थे सत्य तीर्थ, उन्होंने इस टीका को लिखित रूप में इसकी रचना कर ली। और फिर ये वापस आ गए। वापस आते आते वो गोदावरी नदी के तट पर दो ब्राह्मणों से मिले, जिनका नाम था शोभन भट्ट और स्वामी शास्त्री, जो कि मध्वाचार्य के शिष्य बने। और आगे चल के ये शोभन भट्ट बने पद्मनाभ तीर्थ और स्वामी शास्त्री बने नरहरि तीर्थ। ये दो बहुत प्रसिद्ध नाम है मध्वाचार्य के संप्रदाय में। और मध्वाचार्य के बाद इन्होंने ये गुरु शिष्य परंपरा चलाई, पद्मनाभ तीर्थ और नरसिंह तीर्थ, नरहरि तीर्थ, क्षमा कीजिए। तो इस तरह से वो आगे आए, फिर से उडुपी लौट कर आए। उडुपी में लौटने के बाद में वो समुद्र में स्नान करने के लिए अक्सर जाया करते थे, और इस समय उन्होंने कई सुंदर स्तुतियों की रचना भी की। एक स्तुति है जो 5 अध्यायों में है। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब वहां स्नान कर रहे थे, तो दूर पर उन्हें एक नौका दिखाई पड़ा। उसमें थोड़े लोग थे जो व्यवसायी थे, और व्यवसाय के लिए कुछ सामान भरकर वो द्वारका की ओर जा रहे थे। लेकिन वहां पर रेती में अटक के या तूफान में अटक के वो नौका डूबने के तैयारी में था। तो उस समय मध्वाचार्य ने समुद्र के तट पर स्थित होकर हाथों से इशारा कर दिया, जिससे कि नौके चलाने वाले को यह पता चला कि किस तरह से नाव को निकालना है ताकि वो डूबे नहीं। और फिर थोड़े देर बाद वो नौका सही सलामत वहां पर पहुंच गया तट पर। और ये जो व्यापारी थे इतने आभारी हुए मध्वाचार्य के कि उन्होंने कहा कि हम आपको कोई भी भेंट देने के लिए तैयार हैं, तो जो चाहिए आपको मांगिए, जो भी इस नौके में है। तो उस समय मध्वाचार्य उन्होंने देखा कि यहां गोपी चंदन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये गोपी चंदन का जो बड़ा टुकड़ा है मुझे वो दे दो। आखिर साधु को सन्यासी को चाहिए क्या? तो गोपी चंदन का टुकड़ा जब आया तो गिर पड़ा, और टूटकर अंदर से भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बाहर आई। और ये सुंदर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, एक नृत्य करने के रूप में। एक हाथ में एक छड़ी थी और एक हाथ में एक थोड़ा भोजन था। इसको नर्तक गोपाल कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसे नर्तक गोपाल की मूर्ति कहते हैं। सुंदर मूर्ति थी। ये मूर्ति इतनी भारी थी कि वहां पे जो 30 लोग थे वो भी उसे उठा नहीं पाए, लेकिन अकेले मध्वाचार्य जी ने उसको उठाया और कई मीलों तक अकेले उठाकर उडुपी के शहर में ले आए, और वहां मूर्ति की स्थापना की और वहां सुंदर मंदिर बनाया, जो आज भी मध्वाचार्य के बताए हुए पद्धति के अनुसार वहां पूजा अर्चा चलती है। उस समय मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि सन्यास का नाम उनका ये था, तीर्थ संप्रदाय। जैसे सन्यास लेते समय कई ऐसे उपाधि दिए जाते हैं, तीर्थ, पुरी इत्यादि, और भारती इत्यादि, ये थोड़े निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। लेकिन सरस्वती, पुरी, तीर्थ ऐसे जो नाम दिए जाते हैं वो उच्च श्रेणी के सन्यास माने जाते हैं। तो उनको पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ये उपाधि सन्यास के समय उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष ने दी थी। तो खैर, मध्वाचार्य जी जब उन्होंने स्थापना की मंदिर की, फिर एक बार दोबारा वो चले बद्रिकाश्रम की ओर। उस समय महाराष्ट्र में आए तो वहां एक राजा एक तालाब खोद रहे थे प्रजा के हित के लिए, तो मध्वाचार्य और उनके शिष्य भी वहां पे उस काम में लग गए। फिर आखिर वो राजा के पास गए और राजा को ही उसी कार्य में लगा के फिर वो आगे चलता था। तो इस ओर हिंदू लोग रहते थे, उस ओर मुसलमान लोग रहते थे। तो नदी पार करने के बाद मुसलमानों का इलाका था, तो मध्वाचार्य घबराए नहीं, पार करके चले गए। वहां के सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और वो मुसलमान नवाब के पास ले गए। मुसलमान नवाब इतने प्रसन्न हुए मध्वाचार्य के ऊपर कि उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा राज्य देने के लिए तैयार हूं, बहुत धन देने के लिए तैयार हूं, आप राज्य करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राज कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे भगवान का भजन करना है, अध्ययन करना है, प्रचार करना है। और फिर वो आगे गए। आगे चल के कई डकैत वहां आए, उन पर हमला किया, तो उनके साथ में जो थे सत्य तीर्थ और वो दोनों थे केवल उस समय, तो उन्होंने सारे डकैतों को अपने ही शारीरिक बल से मार डाला। वो थे कई और मध्वाचार्य थे अकेले, लेकिन इतने बलशाली थे वो, क्योंकि आखिर थे वायुपुत्र, इसलिए इन सारे डकैतों को मार डाला। आगे चल के वहां जंगल के बीच में एक शेर ने आक्रमण किया और सत्य तीर्थ के ऊपर हमला किया, और उस समय मध्वाचार्य ने अपने हाथों से शेर को और सत्य तीर्थ को अलग कर दिया, इतने बलवान थे वो। और अपने बचपन की बात है, बचपन की युवावस्था की बात है कि जब वो उडुपी में थे तो वहां कडंजर करके एक आदमी था, बहुत पहलवान माना जाता था, 30 लोगों की शक्ति उसके अंदर थी, ऐसे लोग कहते थे, सबसे बड़ा पहलवान उस इलाके का। तो मध्वाचार्य ने उससे कहा कि मैं मेरा बायां पैर का अंगूठा जमीन पर रख रहा हूं, अपना पूरा बल लगाकर मेरे बाएं पैर के अंगूठे को जमीन से अलग कर लो, ऊपर खींच लो। तो उस कडंजर नाम के आदमी ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन एक उंगली को भी मध्वाचार्य के वो उठा नहीं पाए, इतने शक्तिशाली थे मध्वाचार्य। तो इस तरह से लौट के आए फिर से उडुपी बद्रिकाश्रम जाकर। जब हम बद्रीनाथ गए थे तो वहां सुनने में आया कि जब मध्वाचार्य वहां पहुंचे तो इतने तेजी से जा रहे थे, उतना उनका बल था कि उनके जो साथी थे वो बिल्कुल साथ नहीं रख पाए उनके। और जब वो ऊपर ऊपर चट्टानों पर पहुंच गए तो क्योंकि वो वायुपुत्र है तो एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर कूद मार के छलांग मार कर वो जाने लगे। और बेचारे उनके साथी थे, वो क्या करते, वो थोड़ी एक चट्टान से दूसरे चट्टान जा सकते थे, तो वहीं के वहीं वो रह गए। और फिर वो पहुंचे बद्रिकाश्रम और लौट के आए थे। तो इस तरह वो बद्रिकाश्रम गए थे और लौट कर भी आए। जब वो लौट कर आए तो उस समय एक त्रिविक्रमाचार्य नाम के व्यक्ति थे जो उनके शिष्य बने, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था नारायणाचार्य। तो नारायणाचार्य इन्होंने आगे चल के मध्वाचार्य के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जो कि एक अधिकृत ग्रंथ माना जाता है, जो प्रभुपाद जी भी अपने टीका में तात्पर्य में लिखते हैं कि मध्वाचार्य के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये श्री मध्व विजय नारायणाचार्य विरचित ग्रंथ पढ़ना चाहिए हमें। तो त्रिविक्रमाचार्य के इस पुत्र ने ये ग्रंथ लिखा, और नारायण आचार्य उनके छोटे भाई, उन्होंने आगे चल के संन्यास लिया और विष्णु तीर्थ उनका नाम हुआ। तो इस तरह से मध्वाचार्य ने अष्टमठ वहां स्थापित किए उडुपी में, और आज भी ये अष्टमठ चल रहे हैं और काफी समय तक चलते रहेंगे। अभी आगे अपने 8 प्रमुख सन्यासी शिष्यों को एक एक मठ दिया संभालने के लिए, और जो मूल मठ है उसको उत्तरराड़ी मठ कहते हैं। तो इस तरह से मध्वाचार्य ने जो प्रथा, जो रीत रिवाज वहां शुरू कर दी, आज तक भी चल रहा है। वहां शंकराचार्य के संप्रदाय के लोग श्रृंगेरी मठ में जब उन्होंने देखा कि मध्वाचार्य का गौरव कितना है, यश बढ़ रहा है, तो वो चिंतित होने लगे, सोचने लगे कि इसका कुछ हमें करना चाहिए। तो नाना तरह के अफवाहें फैलाने लगे कि जिस संप्रदाय में, जिस परंपरा में ये पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने दीक्षा ली है वो प्रामाणिक नहीं है। और उनके प्रमुख सन्यासी थे जिनका नाम था पुंडरीक पुरी, वो आए उडुपी मध्वाचार्य से वाद करने के लिए, उनको हराने के लिए, लेकिन सबके सामने मध्वाचार्य ने उनको हरा दिया। और ऐसा भी हुआ कि उनके जो कई लिखे हुए ग्रंथ थे वो गायब हो गए मध्वाचार्य के, और आखिर में जयसिंह नाम के एक राजा थे, उनकी कृपा से ग्रंथ फिर से मिल गए। इस तरह से मध्वाचार्य ने कई ग्रंथ लिखे और बड़े उत्साह से और बड़े शूरवीरता से मायावाद भाष्य का खंडन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय से 2 सिद्धांत स्वीकार किए, जैसे कि उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों से 2-2 सिद्धांत स्वीकार किए, तो मध्वाचार्य संप्रदाय से उन्होंने ये 2 सिद्धांत स्वीकार किए। पहली बात कि वो कृष्ण के रूप को मानते हैं, ये नहीं कहते कि कृष्ण निराकार है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति ये साक्षात श्री कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। ये सिद्धांत को स्वीकार किया, और दूसरी बात उनका जो मायावाद खंडन था उसको स्वीकार किया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी मायावाद भाष्य का इतना खंडन करते थे। तो ये दो पॉइंट, ये जो सिद्धांत मध्वाचार्य के संप्रदाय से स्वीकार किए। मध्वाचार्य 80 वर्ष के उम्र तक रहे, और अपने मठ में जब वो ऐतरेय उपनिषद के ऊपर टीका लिख रहे थे तब उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ये भी एक बहुत सुंदर लीला है कि कैसे आज तक भी जो उनके आसन है जहां पर वो बैठा करते थे वो हम दर्शन कर सकते हैं। वो मुख्य जो उड़पी मठ है उसके सामने, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके सामने उनका मठ है, और वहां पे खिड़की से हम दर्शन कर सकते हैं कि वही पीठ जहां पर वो बैठे थे, आसन ग्रहण किए थे, वो टीका लिख रहे थे ऐतरेय उपनिषद के ऊपर, जब वो अदृश्य हो गए वहां से, जब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, अभी तक वो खिड़की से दिखाई पड़ता है। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हम मध्वाचार्य की कृपा की याचना हम करें कि वही आध्यात्मिक बल, वही श्रद्धा, वही विश्वास हमारे हृदय में भी जागृत हो, और उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय शुद्ध होकर भक्ति जागृत हो सकती है। श्रीपाद मध्वाचार्य की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रश्न ये है कि हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य के संप्रदाय से कब जुड़ गया? मध्वाचार्य का संप्रदाय तो चलते आया लक्ष्मीपति तीर्थ तक। माधवेंद्रपुरी इन्होंने दीक्षा ली लक्ष्मीपति तीर्थ से, और माधवेंद्रपुरी से यह गौड़ीय संप्रदाय आरंभ हुआ। और माधवेंद्रपुरी के अनेक शिष्य थे, उनमें से प्रमुख थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के भी शिष्य थे, उनमें से प्रमुख हुए चैतन्य महाप्रभु।